हरे कृष्णा। भक्ति के पांच प्रबल रूप, ये भक्ति रसामृत सिंधु के 13वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं और कल हमने चर्चा समाप्त की थी। कौन से श्लोक पर याद है? स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साच विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुमित केशितीर्थोपकंठे मा प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्तिरंगः। इसका मतलब क्या है? कौन इस श्लोक का अर्थ बताएंगे संक्षेप में? होठ है वो अंकुर के समान खिल रहे हैं, देवी शरीर है उनका, नाम हरि, किसी घाट पर खड़े हैं। तो ऐसे गोविंद का दर्शन नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि करोगे तो क्या खतरा है? अपने बंधुओं के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो आप सब तो उस स्तर को पार कर चुके हैं, आपका संसार तो नष्ट हो ही गया अभी, क्योंकि आपने कृष्ण की भक्ति बड़े गंभीरता से शुरू कर दी है, तो अभी आपके लिए तो पुनर्जन्म तो है नहीं। लेकिन कृष्ण भावना में हमारे सारे संबंधों को हम देख सकते हैं। तो संसार में संबंध रखना कोई बुरी बात नहीं है, अगर हमने इनको कृष्ण पे केंद्रित किया तो। तो ये किस संदर्भ में रूप गोस्वामी श्लोक कह रहे हैं? ये इस अध्याय में क्या चर्चा हो रहा है? भक्ति के पांच प्रबल अंग, जो कि विशेष करके अंतिम पांच अंग है 64 अंगों में से, और साथ साथ इन पांच अंगों का उल्लेख अन्य जगह भी पूर्व रूप गोस्वामी इन 64 अंगों में कर चुके हैं, जिसका वर्णन यहां पर है। तो पुनः इन पांच अंगों के महत्व को दोहराने के लिए इस अध्याय में वो हरेक इन पांच अंगों में से हरेक का उदाहरण दे रहे हैं। तो ये पहले अंग का उदाहरण है पांच में से, श्री मूर्ते कि भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन या तो साक्षात भगवान का दर्शन, क्योंकि दोनों में अंतर नहीं होता है। अच्छा, अब दूसरा श्री भागवतम, श्री भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवत का पाठ करना। तो आइए इसके बारे में इसी एक भाव में रूप गोस्वामी कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा था देखना नहीं, जबकि उनकी उनका आदेश है कि देखना चाहिए, वो कहना चाह रहे हैं देखो अवश्य देखो, परंतु वो कह रहे हैं देखना नहीं। तो जिस चीज की निंदा कर रहे हैं ऐसे लग रहा है कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जैसे कि संसार का संग। देखो अगर तुम्हें संसार का संग चाहिए तो फिर कृष्ण की ओर नहीं देखना। मानो कि संसार का संग बहुत मूल्यवान हो और कृष्ण का दर्शन मूल्यवान नहीं है, हानिकारक है, ऐसा लग रहा है, परंतु उनका उद्देश्य बिल्कुल विपरीत है। वो कहना चाह रहे हैं, जिस चीज की वो निंदा करना चाहते हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और जिस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं उसकी निंदा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आने वाले श्लोक में जहां वो श्रीमद् भागवत का गुणगान करेंगे, उसमें भी वो इसी प्रकार का जो अलंकार है उसका प्रयोग करेंगे। अलंकार मतलब जो अपने साहित्य में जो भाषा को अलंकृत करने के लिए ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इनको अलंकार, तरह तरह के अलंकार होते हैं। तो उनमें से ये एक है, इसको व्याज स्तुति कहते हैं, व्याज स्तव या व्याज स्तुति। मतलब जब हम वास्तव में किसी चीज की प्रशंसा करते हैं परंतु ऐसे लग रहा है कि हम निंदा कर रहे हैं, व्याज व्याज स्तुति। मतलब निंदा के माध्यम से हम प्रशंसा कर रहे हैं, कर रहे हैं प्रशंसा परंतु ऐसे लग रहा है कि निंदा कर रहे हैं। क्योंकि जब रूप गोस्वामी कहते हैं गोविंद की ओर देखो नहीं, वो कहना चाहते हैं कि गोविंद की ओर अवश्य देखो। उसी प्रकार से अगले श्लोक में जहां वो भागवतम का गुणगान करेंगे वहां भी अपने एक मित्र को वो मूर्ख कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत को पढ़ा है, सुना है, और उससे क्या हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में उनकी रुचि बिल्कुल खत्म हो गई है। तो आगे पढ़िएगा क्या अनुवाद है।
श्री रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, ये मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगल व्रत श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्म आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे।
बस ठीक है। तो यहां रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हे मूर्ख मित्र, मूर्ख नहीं है वो, जिस मित्र का वो संबोधन कर रहे हैं वो मूर्ख अवश्य नहीं है वो सबसे बुद्धिमान है ना। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत के श्रवण करने में रुचि जागृत हो गई है। तो वो कहते हैं कि तुमने अवश्य श्रीमद् भागवत के हरेक श्लोक का हरेक अक्षर बड़े ध्यान से सुना होगा, इसलिए जो सर्व कल्याणकारी जो पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल तुच्छ बन गए हैं और तुम इनका तिरस्कार कर रहे हो। तो फिर से व्याज स्तुति, उस मित्र को मूर्ख कहकर उनकी निंदा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि निंदा कर रहे हैं लेकिन वास्तव में प्रशंसा कर रहे हैं। और वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है परंतु वास्तव में निंदा करते हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत ही प्राप्त करने योग्य उद्देश्य है, पुरुषार्थ है मनुष्य के लिए। भक्ति की दृष्टि से वास्तव में धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं है, परंतु ऐसा वो बतला रहे हैं कि मानो ये चार पुरुषार्थ बहुत ही मूल्यवान हैं, इनको प्राप्त करना चाहिए। और अब इस व्यक्ति ने जाकर श्रीमद् भागवत सुन लिया और सब खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? धर्म अर्थ काम मोक्ष में सुरुचि चली गई, तो क्या रह गया? लेकिन वो प्रशंसा है वास्तव में, कि वास्तव में कितना बुद्धिमान है कि इसने श्रीमद् भागवत सुन लिया और इससे उसका सारा जो पुरुषार्थ के चार पुरुषार्थों की प्रति आसक्ति है वो खत्म हो गई। तो अपने मित्र को मूर्ख इसलिए बुला रहे हैं कि वो अभी पूरी तरह से उदासीन हो गए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति। और धर्म अर्थ काम मोक्ष को सुंदर कह रहे हैं, मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्मों आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। तो वास्तव में रूप गोस्वामी हम सबको आदेश दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पढ़ो और श्रीमद् भागवत सुनो, जिससे कि क्या होगा, ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो आगे पढ़िएगा कि भागवत को किस भाव में समझा जाता है। हाँ, विशेष करके दशम स्कंद, क्योंकि दशम स्कंद जो है वो शिरोमणि है श्रीमद् भागवत का। पहले नौ स्कंद पढ़ने का उद्देश्य है कि हम दशम स्कंद पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। सीधे दशम स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए।
के सकाम धर्म को कूड़े के समान निकालकर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती, तब तक मैं श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता।
आगे बढ़िए।
भागवत में भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है, जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है वही दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है।
तो भागवत पढ़ने की आवश्यकता योग्यता क्या है? त्याग की भावना होना आवश्यक है। भोग की भावना से पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत नहीं समझ पाएंगे, अपराध कर बैठेंगे। आगे पढ़िए।
दूसरे शब्दों में जब तक किसी में श्रीमद् भागवत के सबतः उत्पन्न आकर्षण ना हो तब तक इस दशम स्कंद की कथाओं को यथा रासलीला को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यथा रूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक है।
वास्तव में श्रीमद् भागवत भक्तों के लिए है, और किसी का अधिकार नहीं है इस ग्रंथ के ऊपर। ज्ञानियों के लिए नहीं, योगियों के लिए नहीं, कर्मियों के लिए नहीं, ये केवल परमहंस भक्तों के लिए है। इसलिए इसका नाम है परमहंस संहिता। जो परमहंस हैं या जो हृदय से बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष करके ये श्रीमद् भागवत है। अच्छा, आगे चल के रूप गोस्वामी इन दो श्लोकों का वर्णन करने वाले हैं कि किस अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। अभी जो हमने बात बताई निंदा और स्तुति की, इसी बात को रूप प्रभुपाद जी यह बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं, तो कृपया पढ़िएगा।
श्री रूप गोस्वामी के ऊपर दो श्लोकों में कुछ रूपात्मक रूपात्मक उपमाएं पाई जाती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकतावादी समाज मैत्री तथा प्रेम की संति की भर्त्सना करती हैं।
रूपकात्मक रूपकात्मक
लोग सामान्यतः समाज मैत्री तथा प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं, और इन भौतिक कलमशों को विकसित करने के लिए बृहद आयोजन तथा प्रबल प्रयास करते हैं, किंतु राधा तथा कृष्ण की श्री मूर्तियों का दर्शन भौतिक संगति के ऐसे प्रयासों को भुलाने के लिए होता है। रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है, मानो ऊपर से वे मैत्री तथा प्रेम की भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हो तथा शिव मूर्ति या गोविंद के दर्शकों की निंदा कर रहे हो। ये रूपकात्मक अलंकार इस तरह रचा जाता है कि जिन वस्तुओं की प्रशंसा की जाती है उनकी निंदा हो जाती है, और जो निंदनीय है उनकी प्रशंसा हो जाती है। इस श्लोक का असली भाव यह है कि यदि कोई भौतिक मैत्री प्रेम तथा समाज की बेयुदगी को बुलाना चाहता है तो उसे गोविंद के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए।
बहुत अच्छा, तो अभी इस बात को समझाइए। अभी आपने जो पढ़ा उसको कोई समझाइए संक्षेप में। अभी अभी जो पढ़ा गया है उसको ये अलंकार की बात जो है, स्तुति और निंदा, और इस संदर्भ में तो लिखा हुआ कैसे है? जो संसार का संग है, प्रेम मैत्री आदि, उसकी रूप गोस्वामी वास्तव में क्या करना चाहते हैं? स्तुति या निंदा करना चाहते हैं, परंतु किया क्या है? प्रशंसा किया है। अर्थात इस प्रशंसा के माध्यम से वो निंदा करना चाहते हैं, और श्री गोविंद के दर्शन की स्तुति करते हैं या निंदा करना चाहते हैं? स्तुति करना चाहते हैं, परंतु निंदा के माध्यम से, तो इसे एक प्रकार का अलंकार है। अच्छा, तो दोनों के बारे में ऐसा वो कह रहे हैं श्री प्रभुपाद। फिर पांच अंतिम अंगों के प्रगत भक्तों की संगति करना। अब आगे इन पांच अंगों में से तीसरा जो अंग है इसका वर्णन रूप गोस्वामी करने जा रहे हैं, तो पढ़िएगा।
इसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषय कथाओं के आस्वादन की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया है। एक बार एक भक्त ने कहा, यह आश्चर्यजनक लगता है कि जब से मैंने अपने अश्रुओं से नहलाए गए भगवान को देखा है तब से मेरे शरीर में कंपन होता है और मुझसे मेरा एक भी भौतिक कार्य नहीं हो पाता। उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता, मैं सदा के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब किसी को सौभाग्य से शुद्ध भक्ति का संसर्ग मिलता है तो वह कृष्ण के विषय में सुनने, उनके विषय में जानने के लिए आतुर होता है, अथवा दूसरे शब्दों में वह पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित हो जाना चाहता है।
तो इस श्लोक को पढ़ने से ऐसे लगता है कि ये इस चीज का वर्णन हो रहा है कि भगवान का दर्शन करने से भाव उत्पन्न हो जाता है, परंतु वास्तव में ये कृष्ण के भक्तों की स्तुति है कि कृष्ण भक्त के भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो अन्यों में भी ये भाव उत्पन्न करा सकते हैं। इस बात की पुष्टि यहां पर की गई है। इसका वर्णन करने का उद्देश्य यह है, केवल भगवान के दर्शन करने से क्या होगा इस बात के लिए केवल नहीं, भगवान के भक्त कितने शक्तिशाली हैं, उनकी भक्ति कितनी दृढ़ है कि इसके माध्यम से वो अन्यों का परिवर्तन कर सकते हैं और दूसरों को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। और चौथा है भगवान नाम का संकीर्तन। इसका वर्णन भी आगे करने वाले हैं। तो आपकी किताबों में भी आप चाहे तो पेंसिल से लिख सकते हैं कि ये यहां फिर कृष्ण भक्त का वर्णन समाप्त शुरू होता है, फिर आगे लाइन लगा के आप बता सकते हैं कि यहां से अब नाम संकीर्तन का वर्णन शुरू होगा, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आप पढ़ेंगे तो एक दृष्टि से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इन पन्नों में क्या लिखा गया है।
इसमें टाइटल में भक्त का महत्व,
तीसरा कौन सा है पांच अंगों में से, पढ़िएगा पीछे से। हाँ पढ़िए, प्रगत भक्तों की संगति, ये टाइटल है इसका, जो महत्वपूर्ण पांच अंग हैं उनका पुनः वर्णन हो रहा है इस अध्याय में, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए। हाँ, तो भगवान के नाम का संकीर्तन, इसका वर्णन पढ़िएगा। तो भगवान के नामों का संकीर्तन जब हम एक शुद्ध भक्त जैसे नारद मुनि के मुखारविंद से सुनते हैं तो उसे क्या होता है, साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। और ऐसे संकीर्तन सुनने से हृदय में भोग की कामनाएं खत्म हो जाती हैं और भगवान के प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव करते हैं। क्योंकि नाम और नामी में अंतर है। हाँ नहीं है, सॉरी गलती हो गई, नहीं है। तो जब हरि नाम होता है और विशेष करके शुद्ध नाम होता है, तो शुद्ध नाम में और भगवान में तो कोई भी अंतर नहीं है। तो ऐसे शुद्ध नाम हम सुने तो भगवान का प्राकट्य हमारे हृदय में शीघ्र ही हो जाता है। और आगे आखिरी वाला अंतिम कौन सा है? मथुरावास। तो मथुरावास का पुनः वर्णन श्रील रूप गोस्वामी कर रहे हैं। कोई पढ़िएगा। तो स्मरण का विषय क्या है रूप गोस्वामी का? मथुरावास। और मथुरा में कृष्ण खड़े हैं, विराजे हैं कहां पर? यमुना के तट पर, यमुना तीर वनचारी। और वहां पे वृंदावन का रमणीय दृश्य आ रहा है मन में। कदंब वृक्ष हैं और वहां पक्षी कूज रहे हैं, वहां सुंदर उद्याने हैं, और ये सारे जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके मन में, उनके चित्त में, इनसे दिव्य सौंदर्य और आनंद का अनुभव हो रहा है भक्त को। ऐसा स्मरण करते ही, याद रखिए, स्मरण करके ऐसा अनुभव हो रहा है। और विशेष करके स्मरण में भी बहुत शक्ति है। हम जिस चीज का दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, उसी चीज का स्मरण भी करेंगे। तो हमारे यहां देखिए सब जगह कृष्ण की तस्वीरें हैं, तो इसलिए जब हम कहीं भी आंखें उठाते हैं तो कृष्ण का दर्शन ही होता है। तो स्वाभाविक है कि कृष्ण का स्मरण ही होगा। लेकिन आजकल किसी के घर में जाइए तो किन की तस्वीरें लगी हुई होती हैं? कोई सिनेमा के अभिनेता है, अभिनेत्री है, कोई खिलाड़ी है, उनकी तस्वीरें सब जगह लगी हुई होती हैं। इधर उधर जहां भी बाहर भी जाएंगे आप, दुकानों में इधर उधर ऐसी ही होती है। तो उनका दर्शन ऐसे होता है। तो इस बजाय कि कृष्ण का दर्शन करें जो बांसुरी बजाते हुए यमुना के तट पे खड़े हैं, जैसे यहां है, वो किसी खिलाड़ी का दर्शन करते हैं या किसी अभिनेता अभिनेत्री का दर्शन करते हैं जो कि अपने जगह में कहीं खड़े हों। और फिर स्मरण वो विषय का होता है, उसमें कोई दिव्यानंद नहीं आता। लेकिन ऐसे मथुरा मंडल का श्रवण करने से और स्मरण करने से दिव्य आनंद और सौंदर्य की अनुभूति होती है। तो आगे प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि ये भावना जो उत्पन्न होती है मथुरा मंडल के विषय में, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, सत्य है। तो क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? सत्य है ना? कभी कभी आपको भी लगा है ऐसे वृंदावन मथुरा में रहते हुए, विशेष करके आप कई दिनों के बाद आ रहे हैं और अचानक जैसे ही मथुरा मंडल में आपने प्रवेश किया, कुछ तो अनुभव होता है कि हाँ हम ब्रज में आ गए हम। और आते ही एक प्रकार का उल्लास जो है या हर्ष अंदर से होने लगता है। जिस प्रकार से गर्मी लोगों को न्यूयॉर्क बंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जाके आनंद आता है, उसी प्रकार से भक्तों को ब्रज में आके आनंद लगता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये सत्य है। ये अभक्त भी वर्णन अनुभव ऐसा करते हैं और ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है रूप गोस्वामी द्वारा। ये अनुभूत वर्णन है। श्री रूप गोस्वामी की ये कथन मथुरा तथा वृंदावन के अनुभूत वर्णन है। महान भक्तों ने जो अनुभव किया है उसका वर्णन है। कोई साधारण व्यक्तियों का वर्णन सुनने में हमें कोई रुचि नहीं है। ऐसे अपने अपने मत सुनाने वाले लोग बहुत हैं, कोई कमी नहीं है दुनिया में, है ना? अपने अपना मत सब सुनाना चाहते हैं, अखबारों में, उपन्यासों में, पत्रिकाओं में, टेलीविजन पे, सिनेमा पे, रेलगाड़ी में या कहीं जाएंगे तो अपनी बात, मन की बात बोलने वाले लोग कई होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की बात सुनकर हमें क्या लाभ होने वाला है? हमें तो ऐसे साक्षात्कारी भक्तों का अनुभव सुनना चाहिए, उनका मत समझना चाहिए, और जब वो कहते हैं हमें जानना चाहिए कि ये सत्य है। तो कभी कभी हमें शायद लगे कि ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के सब कहा गया है, ऐसे थोड़ी होता है कि हम केवल मथुरा में अंदर प्रवेश करेंगे तुरंत ऐसे दिव्य भावना आ जाएगा, या कई बार ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं बस एक बार मंदिर में रहने से, एक मुहूर्त रहने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, ऐसी सब चीजें हैं। तो हमारे साथ क्यों नहीं होता? तो शायद ये मन में संशय उत्पन्न हो कि ये बढ़ा चढ़ा के कह दी कहीं बातें हैं, तो इसके बारे में प्रभुपाद जी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पढ़िएगा, अतिशय उक्ति पूर्ण, तो मतलब भेद किया हमने, अतिशयोक्ति पूर्ण क्या मतलब हुआ इसका? अतिशयोक्ति पूर्ण, हाँ, बढ़ा चढ़ा के कहना, थोड़ी शुद्ध भाषा में उन्होंने लिखा है। पढ़िए आगे, तो ऐसे अविलंब फल हमें क्यों नहीं प्राप्त होते? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम एक बार मंदिर में जाते हैं, अगुरु का सुगंध लेते हैं, हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, ऐसे क्यों नहीं होता? हम तो रोज जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कुमारों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कि केवल ऐसे बढ़ा चढ़ा के कहा गया? वहां हुआ तो उनके लिए साथ हुआ, हमारे साथ होगा, धीरे से होगा, अविलंब नहीं, थोड़ा विलंब होगा उसके। तो प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं यहां पर, इनका उदाहरण देके, बिल्वा मंगल ठाकुर और चार कुमारों का उदाहरण देके क्या कहना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? वो उनके लिए सही है कि एक क्षण में एक बार सुगंध ग्रहण करके वो शुद्ध भक्त बन गए, लेकिन हो सकता हमारे लिए नहीं है। यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, सबके लिए संभव नहीं है। हालांकि सिद्धांत तो सही है, परंतु हरेक व्यक्ति के सुकृति के अनुसार उसे अलग अलग मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। इसलिए सबके लिए, ये उनके लिए तो सही है लेकिन सबके ऊपर लागू होगा अविलंब रूप से, वो निश्चित नहीं है। लेकिन आगे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अगर भी हम समझ लें कि बढ़ा चढ़ा के बात की है, फिर भी क्या होगा? क्या लिखते हैं प्रभुपाद? फिर भी समझ लीजिए,
तो भी हमें अपना ध्यान नश्वर भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भाव और नित्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए हमें यथारूप मान लेना चाहिए।
बस इसका मतलब क्या है?
जैसे प्रभु जी मंदिर में जब दर्शन करने लोग आते हैं, लेकिन जब राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम और गौर देवता का श्रृंगार देखते हैं, उनका सौंदर्य देखते हैं, तो वैसे ही इतने मुग्ध हो जाते हैं। ये चीज समझने चाहिए कि जब भगवान को हम देखते हैं,
हाँ ये सही है, परंतु अगर भी हम मान लें कि ये अतिशयोक्ति पूर्ण कथन है, फिर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं फिर भी लाभदायक है। किस प्रकार से लाभदायक है? अभी आपने पढ़ा,
ये जो भौतिक सौंदर्य तो अनित्य है,
उससे हमारा मन दूर हट जाता है। इस भौतिक संसार से, भौतिक सौंदर्य से मन हटाने के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त है, लाभदायक है। अगर भी हम इससे माने कि बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, फिर भी ये लाभदायक है। फिर हम समझ जाएंगे कि देखो भगवान के दर्शन करने से इतना लाभ होगा, तो हम अवश्य और भी आकृष्ट हो जाएंगे, और भी प्रेरणा हमें मिलेगी, उत्साह मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, और उस हद तक हमारा आकर्षण जो है संसार के प्रति कम हो जाएगा। इस दृष्टि से कहते हैं, फिर भी प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं?
तो ये बताया वास्तविक तथ्य है, लेकिन कुछ एक भक्तों के लिए ही सही है और सभी पर अनिवार्य लागू नहीं होते, तो इसको थोड़ा सा और
अभी अभी चर्चा की थी उसके बारे में, चार कुमारों के बारे में। उन्होंने एक बार सुगंध ले लिया, शुद्ध भक्त बन गए। हम लोग हर रोज लेते हैं, तो हमारे साथ वो परिवर्तन तुरंत नहीं होता जो कि कुमारों के साथ हुआ। तो अविलंब उनको वो फल प्राप्त हो गया, तो उनके लिए सही है, परंतु हमारे लिए ये ठीक नहीं है कि एक बार करने से हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। परंतु अगर हम समझ लें कि धीरे धीरे से होगा, परंतु मूल सिद्धांत है कि सुगंध लेने से व्यक्ति भक्त बन जाएगा धीरे धीरे से। चतुष्कुमार तुरंत बन गए, तो हम तुरंत शायद नहीं बने। सुकृति, सुकृति की पूंजी पीछे कितनी सुकृति है, कितनी कृपा प्राप्त की है, उसके ऊपर निर्भर है। भगवान की कृपा जब हो जाती है तो एक क्षण में व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है। एक नौकरानी थी इनके घर में, चैतन्य लीला में कथा आती है, शायद श्रीवास ठाकुर के घर में। उस औरत का नाम था दुखी। तो चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारा नाम सुखी, और वो कृष्ण प्रेम में भाव भोर होगी। तो कृपा आ गया, चैतन्य महाप्रभु एक क्षण में परिवर्तन हो गया। तो ऐसे विशेष कृपा जब आ जाती है तो कोई भी एक क्षण में शुद्ध भक्त बन सकता है, परंतु हम सब साधारण व्यक्तियों के लिए समय लगता है, हमें जीवन भर परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन मूल बात यह है, फायदा अवश्य है। और इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी अंत में कह रहे हैं, जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में है उसके लिए वर्णित फल असामान्य नहीं है। भले भौतिकवादी लोगों को लगे, लेकिन भक्तों को ऐसा नहीं लगता। अनुभव तो अवश्य होता है इस तथ्य का। बिल्कुल, कईयों को ऐसे किया उन्होंने, अनेक अनेकों को किया। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है हमारे साथ ऐसा ना हो कि कोई भक्त हमें आलिंगन कर ले तुरंत हम भाव भोर हो जाएं, ऐसे नहीं हो। उनके साथ हुआ, उनके लिए वो सत्य था, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे साथ भी वही होगा। ताल वृक्षों का उद्धार भी किया उन्होंने, जो रामचंद्र ने तीर मारा था। रामायण में कथा आती है ना, सुग्रीव को अपनी शक्ति बताने के लिए 7 ताल वृक्षों से तीर छोड़ दिया, और वो तीर पाताल लोक में जाकर फिर से आके रामचंद्र जी के उसमें फिर से तीरों के साथ बैठ गई। फिर सुग्रीव समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इनमें अद्भुत शक्ति है। फिर उन्होंने समझौता कर लिया श्री राम से कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और जब चैतन्य महाप्रभु वहां गए थे तो उन्होंने इन वृक्षों का आलिंगन किया, आलिंगन करके बैक टू गॉडहेड भेज दिया, गोलोक वृंदावन उनको भेज दिया वृक्षों को। दोनों आगे चल के भी हम देखने वाले हैं, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध, दो प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साधन सिद्ध मतलब जो हम होने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी साधना कर रहे हैं, हम साधन भक्ति के मार्ग में हैं, तो साधना करते करते परिश्रम से हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सिद्ध साध्य भक्ति। साधन भक्ति से साध्य भक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी सफलता प्राप्त होगी तो ऐसा भक्त साधन सिद्ध कहलाएगा। और थोड़े ऐसे होते हैं जो कृपा सिद्ध हैं, बस बिना ऐसे साधन किए हुए उनको कृपा मिल गया, हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साधन सिद्ध वाले भक्त को कृपा नहीं मिली है, अवश्य उसके बिना तो कृपा तो सब जगह आवश्यक है, चाहे वो साधन सिद्ध हो या कृपा सिद्ध हो। परंतु साधन सिद्ध को साधन भी करना पड़ता है, तब कर करके कई जन्मों तक कृपा धीरे धीरे हफ्तों इंस्टॉलमेंट्स में आती है, फिर उसे मिल जाता है। लेकिन कृपा सिद्ध को क्या है, एक साथ ढेर सारा मिल जाता है। और उसने साधन नहीं किया हुआ होता, ज्यादा थोड़ा बहुत किया भी होगा, आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो हर एक व्यक्ति सोचता मुझे भी कृपा सिद्ध होना चाहिए, मैं बैठा रहूंगा। वो तो भगवान रामचंद्र जी का संग किया था ना उन्होंने, उनके लीला में शामिल हुए थे वो। हाँ बिल्कुल, अब जब कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश में कोई विश्वविद्यालय उनको पीएचडी डिग्री देती है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो, ऐसा नहीं कि वो पीएचडी के लिए 5 साल उन्होंने कुछ बहुत कुछ लिखा पढ़ा संशोधन किया, नहीं, ऐसे वो गए क्योंकि बड़े आदमी हैं इसलिए उनको पीएचडी उन्होंने दे दिया, ऐसे सम्मान के रूप में। इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप भी ऐसा सोचे कि हम जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाएंगे तो हमें भी पीएचडी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें तो बहुत कुछ करना होगा, पहले तो भर्ती होने में, उसके बाद में बहुत पढ़ाई करनी होगी, बहुत कुछ करना होगा, तब भी मिले ना मिले पता नहीं। उसी प्रकार से हम इस आशा से नहीं बैठ सकते कि हम भी कृपा सिद्ध हो जाएंगे, कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। साधन तो हमें करना ही करना है और कृपा की आवश्यकता भी है साथ साथ में, केवल साधन और कृपा नहीं तो कुछ बात बनेगी नहीं। तो साधन भी चाहिए कृपा भी चाहिए, अर्थात हमारा प्रयास साथ साथ भगवान की कृपा, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं दामोदर लीला के समय, कि जो रस्सी कम पड़ गई दो उंगली, वो दो उंगली का महत्व क्या है, प्रयास, भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा, दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहां जबकि इन 5 महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन हो गया, अब रूप गोस्वामी चर्चा करने वाले हैं कि वर्णाश्रम के कर्तव्यों को करना, इसको कर्म कहते हैं, या ज्ञान मार्ग में चलना या वैराग्य के पथ में चलना, इनका क्या ये भी भक्ति के अंग हैं, और इनका भक्ति से क्या संबंध है, अगर वो अंग नहीं भी हैं तो क्या संबंध इनका भक्ति से है। तो इस अध्याय के अंतिम भाग में वर्णाश्रम कर्तव्यों का या तो कर्म की चर्चा रूप प्रभुपाद जी करेंगे, और आने वाले अगले अध्याय में फिर वो ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करेंगे कि इसका भक्ति के साथ क्या संबंध है। तो आइए पढ़िएगा अभी वर्णाश्रम या कर्म। अच्छा, तो ये जो 5 अंग हैं भक्ति के जो सबसे महत्वपूर्ण बतलाए गए हैं यहां पर, वो अलौकिक हैं, असाधारण है, और इनकी शक्ति अचिंत्य है, और इस अचिंत्य शक्ति के द्वारा ये एक नौसुखिया भक्त के हृदय में भी भाव भक्ति का उदय करा सकती हैं। नौसुखिये भक्त को भाव भक्ति के स्तर में पहुंचा सकते हैं, इतनी अचिंत्य शक्ति है इसमें। तो इन अंगों का विशेष लाभ ये है कि वो भाव उत्पन्न करे। साधन भक्ति की परिभाषा को कोई बता सकते हैं? पहले हम चर्चा कर चुके थे ना, दो तीन हफ्ते पहले, साधन भक्ति की परिभाषा। और आगे? हाँ नहीं, वो नहीं, जिसका उद्देश्य भाव भक्ति है। श्लोक बोलिए, कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना भिदा। कृति साध्या मतलब जो इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, मतलब जब इंद्रियां भगवान की सेवा में इस्तेमाल की जाती हैं तो ये साधन भक्ति कहलाता है। जबकि ये कार्य इस उद्देश्य से की जा रही हैं कि फल साधन भक्ति का भाव भक्ति का हो। साधन भक्ति का उद्देश्य है भाव भक्ति को प्राप्त करना। ठीक है ना, याद है ना, चर्चा हम कर चुके हैं पहले। कृति साध्या भवेत साध्य भावा। कृति साध्या यह है साधन, साधन भक्ति हमारी इंद्रियां। भवेत हो जाता है, यह इसका परिणाम है। साध्य, साध्य मतलब गति, क्या है? भावा, भाव भक्ति। सा साधना भिदा, ऐसे भक्ति को साधन भक्ति कहते हैं। तो ये पांच अंग ये भी साधन भक्ति के अंग है ना, तो इनको करने का भी वास्तविक उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? भाव भक्ति को जागृत करना है ना। जब साधन भक्ति का ही ये उद्देश्य है और ये साधन भक्ति के पांच सबसे प्रबल और महत्वपूर्ण अंग हैं, तो इनका भी उद्देश्य तो वही होना चाहिए ना, कि इनको करने से सच्चा फल क्या होना चाहिए? भाव भक्ति। तो कभी कभी शास्त्र में ऐसे देखा जाता है कि कोई भौतिक लाभ का भी उल्लेख होता है कि इस अंग का पालन करने से आपको ये भौतिक लाभ मिलेगा, बीमारियों से हम मुक्त हो जाएंगे, चरणामृत का पान करने से आप रोग मुक्त हो जाएंगे, या अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। तो भक्तों को क्या क्या संबंध है इन सब चीजों से? लेकिन ये ऐसे इसलिए लिखा गया है, ऐसे शास्त्रों को जो आदेश है वो इसलिए बताए गए हैं ताकि जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भक्ति थोड़ा बहुत करना चाहते हैं परंतु भौतिक इच्छाएं अनेक है उनके हृदय में, वो आकर्षित हो सके भक्ति के ऊपर, तो थोड़ी प्रेरणा उनको मिले कि वो भक्ति कर लें, इसलिए ऐसे आदेश बताए गए। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि मूल उद्देश्य इन सब का है भाव भक्ति को प्राप्त करना। और विशेष करके जब इन अंगों को अपराध रहित तरीके से किया जाता है तो इसके परिणाम शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। और वर्णाश्रम के जो कर्तव्य होते हैं वो तो कोई ना कोई भौतिक लाभ के लिए ही होते हैं, जैसे हम प्रायश्चित करते हैं कर्मकांड में, तो हमने कुछ पाप किया होगा तो पाप से मुक्त होना चाहते हैं इत्यादि। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि हालांकि कई ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करने से, जिसको कर्म कहते हैं, कर्म करने से ये कर्म भी भक्ति के अंग हैं, ऐसे ये विद्वान कहते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी और अन्य वैष्णव आचार्य इस बात से सहमत है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भक्ति को कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। आप भगवद गीता में पढ़े होंगे तात्पर्य में, दो प्रकार के स्वधर्म होते हैं। कौन से दो प्रकार के स्वधर्म हैं? भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक स्वधर्म किस पर आधारित है? वर्णाश्रम पर आधारित है। क्यों? क्योंकि शरीर पर आधारित है। तो वर्णाश्रम के अनुसार जो धर्म होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, वर्णों के अनुसार, आश्रम के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, परंतु आध्यात्मिक स्वधर्म वो सबका एक ही है और वो है कृष्ण भक्ति। तो वर्णाश्रम का उद्देश्य कृष्ण भक्ति होना चाहिए, परंतु वर्णाश्रम के कर्तव्य जो है ये कृष्ण भक्ति के अंग नहीं है। पहले भी हम सुन चुके हैं ना, आपको याद है कई एक दो हफ्ते पहले चर्चा हुई थी इसके बारे में। ये सब गौण भक्ति कहलाता है, ये वास्तव में भक्ति के अंग नहीं है। कल्पना कीजिए कि कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना क्या ये भक्ति का अंग है? है या नहीं है, या है भी नहीं भी क्या है? हाँ, तो अपने आप में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना यह भक्ति का अंग नहीं है, परंतु भक्ति से जोड़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सही रास्ते पर रखना चाहता है, एक पाप रहित जीवन जीना चाहता है और सही ढंग से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार भी कर सकता है, परंतु गृहस्थ आश्रम अपने आप में भक्ति का अंग नहीं है। अगर उसने अपने गृहस्थ आश्रम को शुद्ध बनाया भगवत भक्ति के द्वारा, तो वो उसके लिए एक वाहन हो जाएगा, परंतु ये अंग नहीं है, एक गौण धर्म हो जाएगा ये। परंतु भक्ति के 64 अंगों में ऐसा कभी नहीं कहा रूप गोस्वामी ने, आश्रम और आश्रमों का और वर्णों का वर्णन नहीं किया है रूप गोस्वामी पर। और जब तक वर्णाश्रम के कर्तव्यों को, कर्म को भगवान की भक्ति करने में लगाए नहीं जाए, तब तक वो गौण भक्ति भी नहीं कहलाता है। वर्णाश्रम धर्म ये कर्म, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को कर्म कहते हैं, है ना। तो कर्म जो है ये 64 अंगों में नहीं है भक्ति के, तो ये भक्ति के अंग नहीं है, परंतु ये गौण भक्ति कहलाते हैं। हालांकि क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट ये भक्त को सहायता करते हैं उसका जीवन शुद्ध करने में, सही रास्ते में रहने में, अपने आप को संसार के प्रलोभनों से दूर रखने में मदद करती हैं, उसके जीवन में एक स्थिरता लाने में मदद करती हैं। इसलिए ये भक्ति में लाभ थोड़ा बहुत मदद कर सकती हैं, परंतु अपने आप में भक्ति के अंग नहीं है। अगर इन कर्मों का प्रयोग इसके लिए किया जाए कि इनका अंतिम उद्देश्य है हमारा शुद्धिकरण, ताकि हम अनन्य भक्ति कर सके भगवान की, तो फिर यह गौण भक्ति कहलाता है। परंतु अगर यह भी उद्देश्य नहीं रहा, तो फिर वो गौण भक्ति भी नहीं है। ठीक है ना, स्पष्ट है बात? ठीक है, अब सब समझ गए। अच्छा, आगे पढ़िएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कहते हैं कि वर्णाश्रम के वर्णाश्रम धर्म या ये कर्म जो है ये भक्ति का अंग नहीं है, और हम सब भक्ति करना चाहते हैं, तो क्या फिर हमें वर्णाश्रम से कुछ लेना देना नहीं है? फिर भक्त को वर्णाश्रम की ओर कैसे देखना चाहिए? हम वर्णाश्रम में हैं या नहीं है? हमें भक्ति करना चाहिए या वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए? आप क्या कहते हैं? तो वर्णाश्रम का पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भक्ति में आ चुके हैं, इसका इसकी परिभाषा क्या है?
तो भक्ति शब्द है, तब तक अपने वही जो वर्णाश्रम के कर्तव्य है उनको पालन
करना। तो इसी बात की पुष्टि भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में, ग्यारहवें स्कंध में उद्धव गीता में करते हैं। वो लगाएंगे कृपया, तावत कर्माणि कुर्वीत। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। अच्छा अभी अभी क्या, हाँ बताइए, हमें थोड़ा अर्थ समझाइए श्लोक का। अभी हम आपने समझाया क्या है, तो अर्थ तो हिंट तो आपको मिल गया अभी। तावत और यावत, तावत और यावत साथ में जाएंगे हमेशा, जब तक तब तक, है ना। जब हम तब तक इस कहते हैं तो जब तक भी होना चाहिए ना साथ में उसी वाक्य में, उसी प्रकार तावत है तो यावत होना चाहिए। तो बोलिए अभी, ठीक है, सार अच्छा बता दिया आपने। अच्छा शब्द भेद करके कहिए, तावत, तावत मतलब तब तक, कर्माणि कर्म, कौन से कर्म, वर्णाश्रम धर्म, यहाँ कर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य, कुर्वीत करना चाहिए। आप सब तो संस्कृत पंडित ही हो गए। तावत कर्माणि कुर्वीत, अब ये पहली बात, न निर्विद्येत यावता, निर्विद्येत ये शब्द हम पहले भी सुन चुके हैं पिछले दो दिनों में, कल ही शायद, कौन से श्लोक में, हाँ बिल्कुल श्लोक पढ़िएगा, एतन् निर्विद्यमानानां इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरे नामानुकीर्तनम्। याद है ना, देखिए अपने किताबों में देखिए, है ना, अनुकीर्तनम तो याद है, अनुकीर्तनम की चर्चा हुई थी, कल ही हुई थी ना। तो एतन निर्विद्यमानानाम, तीन प्रकार के लोगों का वर्णन था उस श्लोक में, बताइए, एक थे कौन, निर्विद्यमानानाम, दूसरे इच्छताम, योगिनाम, योगिनाम कौन है, जो मुक्त है, मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, इच्छताम जिनकी बहुत कई भौतिक कामनाएं हैं, और निर्विद्यमानानाम जिनकी कोई भौतिक कामना नहीं है। तो निर्विद्यमानानाम, तो निर्विद्यमानान और निर्विद्येत, कुछ संबंध लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, निर्विद्यमान और निर्विद्येत अर्थ वही है ना, तो यह मतलब क्या है, तब तक व्यक्ति को कर्म करते रहने चाहिए जब तक निर्विद्येत न, जब तक वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त, भोग की इच्छाओं से मुक्त न हो, ठीक है ना। निर्विद्यमानानाम मतलब जिनकी भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो जब तक हम निर्विद्यमान नहीं होते, निर्विद्येत, तब तक हमें हमारे कर्म करते रहने चाहिए। और दूसरी बात क्या है, मत कथा श्रवणादो वा मतलब और, या मत कथा, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं तो मेरी कथा, कृष्ण कथा श्रवण आदो, श्रवण से शुरू होकर, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, श्रद्धा यावत न जायते, जायते मतलब उत्पन्न होता है। तो व्यक्ति को कर्म करते रहने चाहिए जब तक कि दो चीजें, एक उसके मन में भौतिक भोग की कामना खत्म न हो, और दूसरी बात कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न न हो। ठीक है, सरल है ना? अभी आप में से कोई बताइए इसका अनुवाद, शब्दार्थ, शब्द भेद करके बताइए। बोलिए, गलती हो जाए कोई बात नहीं, प्रयत्न कीजिए। कर्माणि मत के, कर्माणि क्यों, कर्म क्यों नहीं, अनेक कर्म बहुवचन। हाँ, केवल श्रवण में, श्रवण आदो, आदो मतलब श्रवण से शुरू करके और क्या होता है, कीर्तन स्मरण आदि। तो दो शर्त बताए हैं, अगर इन दो शर्तों की पूर्ति हो जाती है तो फिर व्यक्ति को वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, निर्विद्यमान होना है, फिर भी श्रवण आदो मत कथा श्रवण आदो से ही होगा, कृष्ण कथा श्रवण आदो। अच्छा, आप याद रखिए, जब हम पहले परिचर्या या उसके पहले चर्चा कर रहे थे, भगवान का दास बनना, कर्मार्पणम की चर्चा की थी ना हमने, आपको याद है, नोट्स देखिए आपके पहले, कर्मार्पणम, कर्मार्पणम के दो भाग, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम दास्य, नवधा भक्ति के कार्यों को करना, तो वर्णाश्रम का भी एक भाग है एक दृष्टि से, परंतु अन्य कार्यों की तरह नहीं है। वर्णाश्रम दास्य के दो भाग हैं, एक है डायरेक्ट नवधा भक्ति, श्रवणादो कीर्तन श्रवणादो, और दूसरे हैं जो वर्णाश्रम के पुण्य कार्य हैं, उनको अर्पण किए जा सकते हैं, परंतु उनको इतना भक्ति का अंग नहीं माना जाता, ये तो डायरेक्ट भक्ति के अंग हैं, श्रवण कीर्तन आदि। तो वर्णाश्रम का पालन करते हुए भी भक्ति के अंगों को हमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष साक्षात करते रहना चाहिए। ठीक है, जो भक्त के लिए अनुकूल है उस हिसाब से हमें करते रहना चाहिए, और जिस हद तक हमारी रुचि बढ़ती जाती है उस हद तक हम धीरे धीरे से कम करते जा सकते हैं वर्णाश्रम के कर्मों को। तो इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं, इस श्लोक में यह वर्णन आता है कि किन परिस्थितियों में वर्णाश्रम लागू होता है। जब तक कि व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, और जब तक उसके मन में भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा या रुचि उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे कई आदेश हैं शास्त्रों में जहां बताया जाता है कि श्रुति स्मृति आदि के वर्णाश्रम आदेशों का पालन करना ही चाहिए, और जो नहीं करेगा उसके लिए बहुत बुरे परिणामों का वर्णन भी आता है। तो ये भगवान का एक आदेश है, एक प्रकार का आदेश है, और दूसरे प्रकार का आदेश यहां पे है। तो कभी कभी अगर भक्त ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें उसकी श्रद्धा है कथा के प्रति इत्यादि, तो फिर वो वर्णाश्रम को नहीं पालन करेगा भी तो इसमें कोई दोष नहीं। दो प्रकार के आदेश हैं, भगवान के एक आदेश का उल्लंघन करके दूसरे आदेश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो उस दूसरे आदेश के लिए योग्य हो गए हैं। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ऐसा नहीं होना है। नौवीं कक्षा का विद्यार्थी नौवीं कक्षा के पढ़ाई को छोड़ कब सकता है? जब वो आठ नहीं नौवे वो तो है ही, जब वो दसवीं में प्रवेश करेगा तब तभी छोड़ सकता है ना। तो जब आठवीं नौवीं कक्षा छोड़ देगा तब, जबकि वो पास होकर फिर दसवीं में जाएगा, है ना। परंतु अगर नौवीं कक्षा की पढ़ाई को छोड़ दिया लेकिन दसवीं में जाने के लिए योग्य नहीं है तो क्या होगा? न इधर न उधर। उसी प्रकार से वर्णाश्रम भी त्याग दिया, भक्ति भी नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? न इधर न उधर, फिर पापी जीवन हो जाएगा। इसलिए एक आदेश है वर्णाश्रम के लिए, दूसरा आदेश है भक्ति के लिए। तो भक्त को वर्णाश्रम में स्थित होकर भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए और धीरे 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 से भक्ति में प्रगति करते 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 कृष्ण के ऊपर अपने निर्भरता को बढ़ाना चाहिए, ताकि वर्णाश्रम के जो विविध प्रकार के जो नियम हैं उनको धीरे उनसे धीरे धीरे से वो मुक्त होते जाए। ठीक है ना? प्रभुपाद ने कई बार कहा कि मेरे तो अभी केवल 50% कार्य समाप्त हुआ है, अभी तो वर्णाश्रम की स्थापना करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्मकांड वर्णाश्रम की स्थापना करना चाहते हैं, वो भक्तिपूर्ण वर्णाश्रम की स्थापना करना चाहते हैं जहां ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ वानप्रस्थ सब मिलकर कृष्ण की भक्ति करें। तो वर्णाश्रम है, परंतु इसमें स्थित होकर भक्तों को भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के इन 64 अंगों का पालन करना चाहिए। तो जो भगवान का पहला आदेश है वर्णाश्रम के लिए वो आसक्ति के ऊपर आधारित है, क्योंकि जो लोग आसक्त हैं उनको थोड़ा कुछ करना है नियम के अनुसार, फिर वो आगे चलते हैं। लेकिन दूसरा आदेश भगवान का वो विरक्ति और श्रद्धा के ऊपर आधारित है। भक्ति का जो अंग है विरक्ति है ना, न निर्विद्येत, विरक्ति है ये, और फिर श्रद्धा, मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। ठीक है, बात स्पष्ट है? अभी वर्णाश्रम और भक्ति के बारे में आप अच्छी तरह से चर्चा कर पाएंगे अन्यों से भी। जब भी आपको समय मिले अन्यों के साथ चर्चा कीजिए, जो भी आपने सुना है जो भी आपने सीखा है अन्यों के साथ चर्चा करते रहिए, फिर इससे आपको याद भी रहेगा अच्छी तरह से, साथ साथ कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर आप पूछ भी सकते हैं। तो अभी अगला अध्याय, अध्याय 14 है, भक्ति की पात्रता। तो पिछले अध्याय के अंत में वर्णाश्रम या कर्म का संबंध जो भक्ति के साथ है उसका वर्णन हुआ था। अब इस अध्याय में वर्णन हम देखने वाले हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका संबंध भक्ति से क्या है। कर्म ये भक्ति का अंग नहीं है, तो ज्ञान और वैराग्य क्या ये भक्ति के अंग हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या संबंध है इनका भक्ति से? तो आइए इस बात को हम जान लेते हैं। कोई पढ़िएगा प्रश्न को, आप विषय को समझ गए ना? विषय को समझ गए? और अगर नहीं है तो क्या संबंध है फिर भक्ति से इनका? जैसे अभी हम पिछले अध्याय के अंत में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कर्म के बारे में, वर्णाश्रम धर्म। कर्म ये भक्ति के अंग है या नहीं है, है या नहीं? थोड़ा उत्साह कॉन्फिडेंटली बोलिए, निश्चय से बोलिए, नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान और वैराग्य है या नहीं, इस अध्याय में हम सीखेंगे अभी। ठीक है, हाँ पढ़िएगा। तो बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग हैं या नहीं?
नहीं
है। क्यों नहीं है? और अगर और नहीं भी है तो फिर क्या संबंध है उनका भक्ति से? वास्तव में ज्ञान शब्द के तीन अंग होते हैं। एक है जीव के बारे में या आत्मा के बारे में जानना, दूसरा ब्रह्म या परम सत्य के बारे में जानना, और तीसरा इन दोनों के एकत्व के बारे में, एकत्व का साक्षात्कार करने का प्रयास करना, अर्थात ये निराकारवादी है। तो ये ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें निराकार ब्रह्म की ओर ले जाता है। इसलिए ऐसे ज्ञान में भक्तों को रुचि नहीं है। विशेष करके ज्ञान के पहले दो अंग जो आत्मा और परम ब्रह्म या ब्रह्म के ज्ञान की का थोड़ा बहुत महत्व है, परंतु जो ज्ञान का तीसरा अंग है इसे भक्तों को कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनको तो निराकार ब्रह्म में तो लीन नहीं होना है। उसी प्रकार से वैराग्य, वैराग्य वो त्याग है जो कि ब्रह्म ज्ञान के लिए अनुकूल है या लाभदायक है। तो ये ज्ञान और वैराग्य जिनकी परिभाषा अभी अभी हमने की है, ऐसे ज्ञान और वैराग्य जो कि भक्ति के लिए अनुकूल या लाभदायक नहीं है, इनको हमें त्यागना चाहिए। जब हम भक्ति को स्वीकार करते हैं तो ये ज्ञान और वैराग्य तुच्छ हो जाते हैं भक्ति के सामने। और यही ज्ञान और वैराग्य श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं ये भक्ति मार्ग में साधक को, साधक के लिए थोड़ी रुकावटें बन जाती हैं, उसे पथ भ्रष्ट करने के लिए, उसे मार्ग से विचलित करने के लिए ये साधन बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं, रूप गोस्वामी को की बात कहते हो कि ज्ञान और वैराग्य थोड़े बहुत मात्रा में अनुकूल हैं शुरुआत में, भक्ति के शुरुआत में, परंतु ये भक्ति के अंग नहीं माने जाते। लेकिन प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, केवल शुरुआत में ज्ञान और वैराग्य थोड़ी मात्रा में लाभदायक है, परंतु आगे चल के भक्ति किसके ऊपर निर्भर है? सेवा तथा भाव पर। और इसके अलावा कुछ नहीं। निष्ठा के अतिरिक्त सिंसियर डिजायर, सिंसियरिटी, ये निष्ठा भी सिंसियरिटी नहीं है। ये इसका हिंदी अनुवाद क्या है ठीक? गंभीरता भी सीरियसनेस हो जाता है, सिंसियरिटी हाँ, प्रामाणिकता भी ठीक है, लेकिन वो सही शब्द नहीं मिल रहा है उसके लिए, अनुवाद में उनको भी नहीं मिला होगा, इसीलिए उन्होंने निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है। आप समझते हैं, सिंसियर, सिंसियर होना चाहिए भक्ति में एक ही जिम्मेदारी भी नहीं, गंभीर भी ठीक है, बहुत ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आतुर होना चाहिए, और जो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल है वही करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। तो ये भाव, जो सेवा भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भक्ति यदि आश्रित है तो केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर, अन्य किसी पर नहीं। उसे निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, तीव्र इच्छा बस। अगर ये नहीं है और बाकी सब कुछ है तो कोई लाभ नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी इसको बताइए, अभी अभी जो एक दो मिनट में चर्चा हुई इसका निष्कर्ष बताइए। नहीं, किस चीज के ऊपर भक्ति निर्भर है? अगर ज्ञान और वैराग्य के ऊपर निर्भर नहीं है तो किस चीज के ऊपर? सेवा भाव और सेवा की इच्छा। तो भक्त को चाहिए निष्ठावान रहे, और वो ज्ञान को हमें त्यागना नहीं है जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ाए। जैसे अभी हम लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप लोग भक्ति शास्त्री के लिए है ना आए हैं ना, तो चार महीनों से क्या कर रहे हैं आप, ज्ञान ही तो प्राप्त कर रहे हैं ना, तो ये क्या बुरी बात है या नहीं? ये तो कम से कम जोर से बोलना चाहिए नहीं। अरे चार महीने बिताते क्यों आप यहां पे? नहीं है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित है। तो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने वाले कोई वस्तु को हम व्यर्थ नहीं समझते हैं। तो ये ज्ञान ब्रह्मवादियों का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये ज्ञानी लोगों का ज्ञान नहीं है ये। उसी प्रकार से वैराग्य, जब इंद्रिय तृप्ति से थोड़ा बहुत निरासक्त रहते हैं तो ये आवश्यक है हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो आगे चल के और ज्ञान वैराग्य की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं, पढ़िएगा। तो ज्ञान वैराग्य के दो दोष हम सुन चुके हैं कि पहला वो भक्ति के सामने तुच्छ है, दूसरा कि वो भक्त को पथ भ्रष्ट करने में सहायता करती है, और एक दोष यहां पे ज्ञान और वैराग्य का दिया हुआ है, उस ज्ञान का और वैराग्य का जो कि भक्ति में लाभदायक नहीं है। ऐसे ज्ञान वैराग्य की चर्चा हो रही है, याद रखिएगा। तो यहां और एक बात बताए और एक दोष के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करने से व्यक्ति का हृदय कठोर बन जाता है, और भक्ति के लिए क्या चाहिए? कोमल हृदय चाहिए। भक्ति से हृदय कोमल बन जाता है। ज्ञान की प्राप्ति से हृदय क्यों कठोर बन जाता है? क्योंकि व्यक्ति को तरह तरह के दर्शनों को पराजित करना पड़ता है, उनका खंडन करना पड़ता है, उनको झूठा साबित करना पड़ता है, तो सदैव वो इसी बात में पड़े रहते हैं। व्याकरण इसको इस बात को, इसकी बात काटो, उसकी बात काटो, उसी में लगे रहते हैं, कोई रस नहीं मिलता उनको। और जो वैराग्य के जीवन जीते हैं, वैराग्य को अपनाते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? भोग को त्यागना पड़ता है, और निरंतर जो है उनको ऐसे दुख झेलना पड़ता है भोग त्याग के कारण। इसलिए इन दोनों से उनका हृदय जो है वो कठोर बन जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठीक है, शुरुआत में, भक्ति की शुरुआत में भी ज्ञान और वैराग्य का स्थान है। यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुरुआत में ये लाभदायक होती हैं, तो फिर अगर आगे चल के ज्ञान और वैराग्य की ये दोष है कि हृदय को कठोर बनाता है, और हम ऐसे ज्ञान और वैराग्य को त्याग दें, तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? किसकी सहायता लेकर आगे बढ़ेंगे भक्ति में? तो रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति की सहायता लेकर भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति किसी अन्य चीज के ऊपर निर्भर नहीं है, भक्ति स्वावलंबी है। भक्ति का अन्य कोई आश्रय नहीं है, अन्य योग पद्धतियां भक्ति पे आश्रित हैं, परंतु भक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। भक्ति कार्य भी है और कारण भी, कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि भक्ति परम है, एब्सोल्यूट। तो भक्ति में आगे बढ़ने का कारण पूर्वकृत भक्ति है, हमने पहले किए हुए भक्ति के बल पर हम भक्ति के प्रगत स्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति भक्ति से प्राप्त हो सकती है, भक्ति ज्ञान और कर्म पे निर्भर नहीं है। तो ये एक पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान वैराग्य की सहायता नहीं है, तो किसी की सहायता तो चाहिए? हाँ, सहायता भक्ति की ही मिल जाएगी। तो दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि ठीक है, ज्ञान वैराग्य को आपने त्याग दिया, तो क्या भक्ति करने से फिर हृदय कठोर नहीं होगा? तो रूप गोस्वामी कहते हैं, नहीं, भक्ति बहुत कोमल है, सुकुमार, भक्ति का गुण ही ऐसा है, क्योंकि भक्ति का गुण है सुकुमार या कोमल, इसलिए हृदय कठोर नहीं बनता है। बहुत अच्छी बात, भक्ति सेवा भाव पे आधारित है और भक्ति हम कठोर हृदय से नहीं कर सकते। और जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति कठोर इसलिए नहीं है क्योंकि ये केवल भगवान के सुंदर रूप लीला गुण आदि के ऊपर आधारित हैं, इनके स्मरण श्रवण कीर्तन के ऊपर आधारित हैं, इसलिए भक्ति बहुत ही कोमल है, इसलिए साधक के हृदय को कठोर नहीं बनाती है और भक्ति में आगे प्रगति कराती है साधक को। तो निष्कर्ष यह है कि भक्ति के कार्यों को इस उद्देश्य से करना चाहिए कि हमारा हृदय पिघल जाए भगवान के संबंध में। तो केवल भक्ति ही हमें भाव की ओर ले जा सकता है, भाव के आनंद को प्राप्त करना है तो केवल भक्ति मार्ग से ही होगा। ज्ञान, वैराग्य, निराकार ब्रह्म की उपासना ऐसे मार्गों से संभव नहीं है। अच्छा, अब कृष्ण भगवान उद्धव को उद्धव गीता में क्या कहते हैं जरा पढ़िए। तो यहां कृष्ण भगवान भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जो व्यक्ति गंभीरता से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए ज्ञान और वैराग्य ये अनुकूल नहीं है। पहली बात कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जो फल ज्ञान और वैराग्य को करने से मिलता है वो भक्ति को भी खुद ब खुद मिल जाता है भक्ति करने से। ज्ञान और वैराग्य के फल से वंचित नहीं रहता भक्त, उसको मिल जाते हैं स्वयं ही। वैराग्य का लक्षण क्या है, वैराग्य का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? ज्ञान। वैराग्य का लक्ष्य है ज्ञान, और ज्ञान का लक्ष्य क्या है, और भक्ति करने से तीनों ही प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान वैराग्य मुक्ति तीनों ही प्राप्त अकेले भक्ति करने मात्र से। इसलिए यहां पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं श्लोक में कि जो ज्ञान और वैराग्य के फल हैं वो भक्त को भी स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं श्री कृष्ण कि इतने सारे कार्य, चाहे वो कर्म हो, हमारा तप हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, अष्टांग योग हो, दान धर्म हो, जो भी कुछ ऐसे उनके जो साधक तरह तरह के साधक करते हैं और जो लाभ उनको प्राप्त होता है उन कार्यों से, वो स्वाभाविक रूप से खुद ब खुद भक्तों को भी प्राप्त हो जाता है। भक्तों के हवाले सब कुछ होता है अगर वो चाहें तो। हालांकि भक्त भक्ति के अलावा कुछ चाहता नहीं है, परंतु फिर भी अगर भक्त कुछ चाहे भी तो उसे आसानी से प्राप्त हो सकता है, चाहे वो कोई भौतिक लाभ हो या आध्यात्मिक लाभ हो। भौतिक लाभ जैसे स्वर्ग लोक को जाना, या आध्यात्मिक लाभ जैसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति करना, या सालोक के सामीप्य आदि मुक्तियों को प्राप्त करना, उसे मिल जाता है। नहीं, ये हम कल से करेंगे, ठीक है? ये अभी हम वैराग्य तक, वैराग्य को के विषय को पहुंच चुके हैं। अब ज्ञान का विषय भी हो गया, ज्ञान वैराग्य। अब यहां विशेष करके वैराग्य की बात होगी तो इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। इसमें दो महत्वपूर्ण श्लोक हैं वैराग्य के बारे में, एक युक्त वैराग्य और दूसरा फल्गु वैराग्य। तो इसकी परिभाषा, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, और अगली बार देखते हैं ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अगली बार कब मिलना है? अभी कल हम नहीं आ पाएंगे, कल बहुत व्यस्त रहेंगे हम। आज भी किसी न किसी तरह से समय निकाल के आए, अभी जल्दी ही जाना है। तो आज क्या तारीख है? 26। कल तो शनिवार है, 27। 28 वैसे भी क्लास नहीं होता है ना, है ना 28, फिर 29, 30, 31 है इस महीने में, कौन सा 31, और फिर परीक्षा कब है, पहले तारीख को, 5 को, अच्छा बढ़ा दिया ना, याद नहीं है, 5 को है, और केवल भक्ति रसामृत सिंधु 5 को है, और फिर 11 को क्या है, भगवत गीता, और फिर उपदेशामृत आदि हो गया, परीक्षा हो गया, दो एग्जाम है 11 और 18, उसके लिए एक हफ्ता तो चाहिए ना भगवत गीता के लिए। तो 30 या 31 को समाप्त करें तो चल जाएगा आपको, या बहुत कम समय हो जाएगा, आप वैसे भी पढ़ाई कर चालू करिए शुरू से, भक्ति रसामृत सिंधु की शुरू से आप पढ़ना शुरू कर लीजिए, होमवर्क होता है बहुत, केवल हम ही होमवर्क नहीं देते हैं क्योंकि हम, अच्छा अच्छा उसमें है, अच्छा अच्छा तो वास्तव में कोई एक क्षण भी भाव भक्ति के लक्षण है आप सबके, अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी इधर उधर नहीं जाने की संभावना है।